समय सार परमागम की 116 से 120वीं गाथा प्रकरण चल रहा है। गाथाओं का अर्थ विस्तार से उस पर चर्चा की और आत्मख्याति टीका अपन पढ़ रहे थे, जिसमें ये प्रश्न कल खड़ा किया था कि इससे बचने के लिए यह तर्क उपस्थित किया जाए जीव पुद्गल द्रव्य को कर्म भाव से परिणाम आता है, इसलिए संसार का अभाव नहीं होगा। इस तर्क का विचार करने पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि स्वयं अपरिणमित पुद्गल द्रव्य को जीव कर्म रूप परिणाम आता है या स्वयं परिणमित पुद्गल द्रव्य को। इसकी चर्चा भी काफी विस्तार से हो गई थी, जिसमें अपन ने उभयतोपास की भी चर्चा की थी। इस तरह के प्रश्न ये हैं कि दो में से जो भी प्रश्न वो का उत्तर देगा वो उत्तर उसका गलत होगा। दो तरह से फंसाना उभयतोपास। अब वो ये कहते हैं यदि स्वयं उसका उत्तर आप पढ़ते हैं, स्वयं अपरिणमित पदार्थ को दूसरे के द्वारा परिणमित कराना शक्य नहीं है, क्योंकि भक्ति वस्तु जो शक्ति सुता ना हो, वस्तु में जो शक्ति सुता ना हो, अन्य परिणमन कराने वाले की अपेक्षा नहीं होती, क्योंकि वस्तु की शक्तियां पर की अपेक्षा नहीं रखती। कल इसी बात को समझाने के लिए उदाहरण दिया था ना, हाथ, कि हम हाथ को मोड़ सकते हैं, तो जिधर को वो मुड़ता है उधर को मोड़ सकते हैं कि दूसरी दिशा में भी मोड़ सकते हैं, तो कहते दूसरी दिशा में नहीं मोड़ सकते हैं। तो जो जहां स्वयं ही मुड़ता है उसे तुम्हारे की जरूरत क्या है मुड़ने के लिए, तुम क्यों मोड़ो उसे, दूसरे के सहयोग की उसे जरूरत नहीं है। और आप कहोगे हम मोड़ सकते हैं हमार, तो फिर उसमें स्वयं शक्ति नहीं रही, ये सिद्ध हो गया ना। और शक्ति का अर्थ ही ये है कि जो दूसरों के सहयोग के बिना काम करने में समर्थ हो। हम ये भी माने कि उसमें एक परिणाम नाम की शक्ति है जिसके कारण वो परिणमित होता है, फिर भी उसके साथ में एक सहयोग की अपेक्षा रखें तो वो शक्ति नहीं, वो तो कमजोरी कहलाती है। जिसको दूसरे के सहयोग की अपेक्षा हो उसे लोक में शक्ति नहीं कहते हैं, कमजोरी कहते हैं। इसलिए कहते हैं शक्ति पर की अपेक्षा नहीं रखती। शक्ति का मतलब ही यह है कि उसे किसी पर के सहयोग की अपेक्षा नहीं है। इस प्रकार दोनों ही पक्षों से यह सिद्ध बात सिद्ध नहीं होती कि जीव पुद्गल द्रव्य को कर्म रूप से परिणमाता है। अतः यही ठीक है कि पुद्गल द्रव्य स्वयं परिणाम स्वभावी हो। अब इसमें यही प्रश्न खड़ा रह जाता है कि वो निमित्त तो है, निमित्त तो है, तो रहे उसके निमित्त होने से ये स्वयं नहीं परिणमा, ये कहां से सिद्ध होता है। किसी ने हमारे हाथ को ऐसा पकड़ कर ऐसा मोड़ा तो कहते देखो मैंने मोड़ा ना, लेकिन तू मत मोड़ और फिर देखो कि वो मुड़ता है कि नहीं, तो तेरे सहयोग के बिना भी मुड़ जाता है तो तूने मोड़े का क्या मतलब है। अब तुझे हाथ लगा के और कर्ता बनना हो जगत के सामने तो अलग बात है। जैसे अपने मुनिराजों को आहार देते हैं ना, तो एक घर वाले आहार देते हैं, वो पढ़ खाते हैं और फिर महाराज उनके यहां आहार करनाया है, सारी व्यवस्था जुटाई जाते हैं, 150 आदमी इकट्ठे हो गए तो तो मैंने ऐसा हाथ लगा देते ना, ऐसा भगवान की पूजा में भी लगा देते ना, तुमने जल चढ़ाया हमने तुम्हें हाथ लगा दिया, और जबरदस्ती का हमने भी जल चढ़ाया मान लेते हैं। क्यों? ये उपचार में भी उपचार हुआ ना, वो द्रव अपने आप पड़ने में धो रहा है और तुम जबरदस्ती हाथ लगाकर ऐसा मान ले कि ये कार्य मैंने किया, समझे ना, तो अपने मन को राजी करने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन मन राजी कहाँ होता है, फिर भी वो कहता है कि साहब हमारे ऐसे भाग्य कहाँ, हमारे यहाँ तो हार हुआ ही नहीं, अब हमारा भी कार्य नंबर लग जाए तो अच्छी बात है। इसका मतलब यह है कि उसका मन कह रहा है कि हाथ लगाने से कुछ हुआ नहीं है, दूसरे को कहने की क्या जरूरत है कि तुमने हाथ लगा दिया था ना, क्यों? ऐसी स्थिति में जिस प्रकार घट रूप परिणमित मिट्टी ही स्वयं घट है, उसी प्रकार जड़ स्वभाव वाले गहना वर्णादि कर्म रूप परिणमित पुद्गल द्रव्य ही स्वयं ज्ञाना वर्णादि कर्म है। इस प्रकार पुद्गल द्रव्य का परिणाम स्वभावत्व सिद्ध हुआ। जब तक समता ना हो तब तक पुद्गल द्रव्य उसका करता है ये सिद्ध नहीं हो सकता। एक सेठ ने एक नई दुकान खोली और उसमें फुल पावर एक मुनीम रखा कि हम तो रहेंगे गांव में और तुम इस दुकान को चलाना है, और तुम फुल पावर हो सारा डिसीजन करने के लिए, तुम बराबर करना इस दुकान को अच्छी तरह चलाना, तुम्हारी जिम्मेवारी होगी, तो बिल्कुल तुमको ही लेना है, हम तो यहां रहेंगे ही नहीं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन बस थोड़ा कोई नया डिसीजन लो ना तो मेरे कान में डाल देना है। एक कान में डालना क्या होता है, तो इस तरह हल्के तरीके से कहता है कि जैसे पूरी आजादी उसे दे दी। अच्छा तो आपके कान में डाल दें और फिर आप कहें कि एक काम मत करो तो हम कर सकते हैं कि नहीं, कि क्या बात करते हो, मैं मना करूंगा फिर भी कर सकते हो, कैसी बात करते हो तुम? तो आप सीधे शब्दों में कहो ना कि जो काम डेली का रूटीन का है और हमने तुम्हें बता दिया है वो वैसे करो, और कुछ भी चेंज करो तो हमारे कान में डाल देना, माने हमसे पूछ के निर्णय लेना। तो पूरी गुलामी है कि पूरी आजादी है, बोलो। भाषा उसे वो ऐसी देता है कि हमने फुल पावर कर दिया, और एक तरकीब से कि बस थोड़ा मेरे कान में डाल देना है। और फिर कान में डालेंगे फिर कान में तुम सुन करके मुंह से कुछ बोलोगे ना तो उसके अनुसार करना है ना, तो फुल पावर तुम ही रहे ना, तो जिम्मेवार भी तुम ही, नहीं जिम्मेवार तुम होगे, जिम्मेवारी तुम्हारी और डिसीजन हमारा, ये कैसे चले। तो पुद्गल द्रव को जैसे कि घड़ा बना मिट्टी, तो घड़ा बन के जो भी दशा दुर्दशा होगी वो भोगना तो मिट्टी को ही है ना, अग्नि में तपाया जाएगा तो उस मिट्टी को ही भोगना पड़ेगा ना, वो ताप कुमार तो नहीं भोगेगा ना, तो जो भोगता है उसे करता होना चाहिए, तो काम बिगड़े तो उसे हम भोगें, और बन जाए मुनाफा हो जाए तो तुम्हारी जेब में जाए, हमारी तो बनी बनाई तनख्वाह है, क्यों क्या होगा बोलो। तो कहते हैं भाषा ऐसी है कि पूरी आजादी है और वास्तव में वो रंच मात्र भी आजादी नहीं है, लेकिन तुम आजादी देने वाले और लेने वाले होते कौन हो? कोई द्रव्य दूसरे को ये परमिशन देता ही नहीं कि तुम हमारे बारे में कोई डिसीजन करो। कौन करेगा? हम ही करेंगे। उसी का नाम तो आजादी है कि जैन दर्शन तो इसके आगे की बात करता है कि डिसीजन न तुम्हें करना है न उसे करना है न उपादान को करना है। डिसीजन तो पहले ही अनादिकाल से है। क्या क्या डिसीजन है अनादिकाल से? कि प्रत्येक मन को स्वयं करेगा, क्योंकि उसमें परिणाम नाम की एक शक्ति है। ख्याल में है ना? ये डिसीजन है। क्या वो तो हमने मान लिया, लेकिन फिर कब क्या करना और कब नहीं क्या करना, ये डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा ना। जैन धर्म तक तो यहां तक ही बात सम्मति हो जाएगी। जैन धर्म कहता है कि नहीं, कब क्या करना है क्या होना है वो भी अनादिकाल से डिसीजन है। कि वो किसने किया? यानी किसी ने नहीं किया है, बस वस्तु के स्वरूप में ही है। तो तुम्हारे ही स्वरूप में है ना वो, तो तुम्हें ही होना उसके कर्ता जिम्मेवार। देखो, एक वस्तु का होता है द्रव्य स्वभाव और एक होता है पर्याय स्वभाव। तो द्रव्य स्वभाव से ये सिद्ध होता है कि इस वस्तु में ए होगा, ए हो सकता है, ए होगा। और पर्याय स्वभाव से ये निर्णय होता है कि जो जो होगा वो किस समय क्या होगा और वो किस विधि से होगा। ये तीन चीजें होंगी ना। उपादान तीन तरह का है, त्रिकाली उपादान, क्षणिक उपादान नंबर एक और क्षणिक उपादान नंबर दो। ये नंबर एक और नंबर दो इसलिए रखे क्योंकि नाम बहुत बड़े हैं, तो नाम लेने में बहुत समय जाता है। क्या द्रव्य? वो कार्य बोलेंगे ना, फिर उसका व्यय, वो कारण। इतना लंबा लंबा बार नहीं बोले तो एक नंबर दो नंबर बोल देते हैं। यहां भी आप लोगों को नाम भी नंबर दे दिए जाते हैं ना, हाजी लेने में सबके नाम ले लेके हाजी लें तो 10 मिनट खराब होते हैं, एक दो तीन चार बोलने में 2 मिनट में निबल जाता है। और कुछ नंबर वंबर नहीं है। जैसे त्रिकाली उपादान तो द्रव्य का नियामक है, वस्तु का नियामक है कि किस वस्तु का में क्या परिणमन होगा। अनंतर पूर्ववर्ती प्रजाओं का व्यय, ये जो उपादान है ना, ये विधि माने प्रक्रिया का नियामक है कि ये काम होगा तो कैसे होगा और कब क्या होगा। काल का नियामक तीसरा उपादान है और निमित्त निमित्त में है। नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं। जब तुम्हारे में एक वो उपादान ये काम करेगा तो निमित्त अपना हाथ तो जरूर लगाएगा। कि लगा लेना, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। यहां तुम्हारे अनुसार यहां कुछ होगा नहीं, ये पक्का समझ लो। अब तुम्हें हाथ लगाना है तो खूब लगाओ, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। यानी हम हाथ लगा करके तो हम करता है सारी दुनिया को ये बताएंगे कि बताते रहना, सुनने वाले जाने, बताने वाले जाने। हमको पुद्गल कहता है हमें कोई लेना मतलब देना नहीं है, तुम्हें संसार में रहना है तो बराबर ऐसा करना, प्रमुख जाना है तो ऐसा मत करना। हमारे में किसी भी कीमत में तुम्हारा हस्तक्षेप नहीं चलेगा। आगामी कलश में भी इसी बात को स्पष्ट किया गया है। ये अपना सबसे प्रिय कलश है जो अपन ने कल पढ़ा था, फिर पढ़ो स्थिति। जो उपजाति छंद है, ये कालिदास का प्रिय छंद है। कालिदास के काव्यों में सर्वाधिक प्रयोग इसका हुआ है क्योंकि इसमें प्रवाह बहुत अच्छा आता है। एकदम जैसे नदी का पानी बहता हो ना, एकदम कर 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 बहता रहता है, एक सा इससे ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है। स्थिति अभिघना खलु उद्गल स्वभाव भूता परिणाम शक्ति, उद्गल में एक परिणाम नाम की शक्ति है, वो स्वभाव भूता, वो स्वभाव है उसका। स्वभाव किसे कहते हैं? जिसमें पर की अपेक्षा नहीं हो। कि वो स्वभाव कैसे हुआ? कि स्वभाव में कोई प्रश्न खड़ा नहीं होता है। समंत भद्र ने लिखा है, स्वभाव अतर्क गोचरा, स्वभाव में तर्क नहीं चलता, वो अतर्क है। क्या कि नहीं गर्म है, क्यों है साहब? ठंडी होती तो बहुत अच्छा रहता। ठंडी क्यों नहीं है? कब है गर्म, अब इसमें कोई तर्क वितर्क नहीं चलता। हमें तुम्हारे लिए विचार के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अब तुम्हें जानना है तो छूके देख लो। नाम स्वभाव अतर्क गोचरा। तो कहते पुद्गल में जो परिणमन नाम की शक्ति है, परिणाम शक्ति माने अपना परिणमन वो स्वयं करे, ऐसी शक्ति उसको स्वभाव भूता, वो किसी कर्म के उदय से उसमें नहीं हुई है, वो स्वभाव है। जब हम पारिणामिक भाव बोलते हैं ना, ये परिणाम वो है, परिणाम शक्ति वो परिणाम है। परिवर्तन को भी परिणाम बोलते हैं, ये विकारी अविकारी भावों को भी परिणाम बोलते हैं, कि जैसे जिसके परिणाम होंगे वैसा उसे फल भोगना पड़ेगा। लेकिन ये परिणाम उस शक्ति त्रिकाल शक्ति के रूप में है। ऐसे भाव शब्द का भी अर्थ बहुत होते हैं। भाव माने द्रव्य, भाव माने गुण, भाव माने पर्याय, भाव माने पदार्थ, सब भावा बोलते हैं ना, उसमें कुछ बहुत अर्थ होते हैं उसके, समझे ना। सर्वे भावा, संपूर्ण भाव। तो कहते हैं ये स्वभाव भूत है। देखो स्वभाव भूत कोई सब चीजें अच्छी होती हैं ऐसा कोई नक्की नहीं है। ये जीवत्व नाम की शक्ति ये भी स्वभाव भूत है ना। सभी शक्तियां स्वभाव भूत हैं। तो वो परम पारिणामिक भाव उसे कहते हैं। मैंने पारिणामिक भाव तीन तरह के हैं ना, जीवत्व भव्यत्व और अभव्यत्व। अब जीवत्व तो बढ़िया है, भव्यत्व को भी बढ़िया मान लो, अभव्यत्व को बढ़िया कैसे मानेंगे? लेकिन ये बढ़िया और नहीं बढ़िया तो तुम्हारे राग के हिसाब से तुम बढ़िया हो गैर बढ़िया कह रहे। कोई जीव अभव्य है तो वो उसका पारिणामिक भाव बताया उसे। पारिणामिक भाव की तो अपने बहुत गीत गाए जाते हैं, उसको अपन अरहंत सिद्ध से भी ऊपर रखते हैं। अभव्यत्व को ऊपर रखेंगे, सब पारिणामों को थोड़ी रखते हैं, वो जीवत्व नाम के भाव को रखते हैं, इसलिए उसे अलग बताने के लिए हमने परम शब्द और लगा दिया। लेकिन भव्यत्व अभव्यत्व को पारिणामिक क्यों कहा? क्योंकि वो किसी कर्म के उदय के निमित्त से जीव भव्य नहीं बना है। अब किसी कर्म के उदय से वो अभव्य नहीं बना है, छह छयोपम और छह से भी नहीं बना है। कोई कर्म की निमित्तता उसमें नहीं है। तो जिसमें पर की निमित्तता नहीं हो उसको बोलते हैं पारिणामिक भाव। कहना ही नहीं, नहीं नहीं हम तो नहीं मान सकते, निमित्त के बिना तो कुछ होगा ही नहीं। निमित्त के बिना, निमित्त को तो रखना चाहिए। अब तो उड़ाने लग गए आप, पहले तो तुम मानते थे कि रखेंगे, कि रखना ही है, नहीं मानोगे नहीं। हाँ तो उसमें पुद्गल कर्म के निमित्तत्व का अभाव निमित्त है, क्योंकि बोलना ही है तो इस भाषा में बोल दो क्या है? समझे ना। अब कोई कोई कर्म का निमित्त उसमें नहीं है, ऐसे अभावात्मक निमित्त भी तो हम जगत में कहे जाते हैं ना, लेकिन उनका वो उसका स्वभाव है और स्वभाव में कोई तर्क नहीं होता यार, स्वभावो अतर्क गोचरा। अब क्यों है क्यों है, बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं भाई उसने क्या गलती करी जिसकी वो जैसे अभव्य है। एक गलती की होती तो फिर अभव्य कैसे होता, यदि वो गलती करने से अभव्य बना होता तो उसका नाम पारिणामिक भाव नहीं होता, फिर तो उसका नाम और एक भाव होता, ख्याल है ना। साहब इसके साथ तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया, ये पुद्गल भी कभी मोक्ष नहीं जाएगा तो इसको तुझे इस पर अन्याय नहीं लगता क्यों, उस पर तुमने सोचा ही नहीं, आकाश भी भव्य नहीं है, सोचा ही नहीं, क्योंकि इसे डर लगता है कि वो जीव भव्य और भव्य है ना, उसमें मैं भी हो सकता, समझे ना क्या, क्योंकि पुद्गल में तो मैं हो नहीं सकता, आकाश में तो मैं हो नहीं सकता, इसलिए वो चाहे जैसा हो वो तो उसकी जो भी मिट्टी पलीत होनी हो अपन प्रभावित नहीं होना चाहिए, लेकिन जीव में मैं भी हो सकता हूं, इसलिए कहता क्यों है, उसने क्या गलती करी, उसको कैसे है, उसके साथ अन्याय है। अब भैया जो प्रकृति में है वो तो है, अब तू उसमें न्याय अन्याय की बात करेगा तो उसका जवाब हमारे पास कुछ नहीं है, है? अभी भी साहब मैं हम स्त्री क्यों बने, हम नपुंसक क्यों बने, हम पुरुष क्यों बने, हम नारकी क्यों बने, तो इसके जवाब तो देगा हमारे शास्त्र, तूने ऐसे ऐसे खोटे खोटे भाव किए थे इसलिए बने, ऐसा कर्म बना था उसका उदय आया इसलिए बना, क्योंकि वो जो पारिणामिक भाव नहीं होंगे उनके बारे में तो सब बात जवाब मिलेंगे आपको, और तू ऐसे नहीं करना, मेरे चित्त में जब से ये महासत्य प्रस्फुटित हुआ है कि एक एक समय का सब कुछ सुनिश्चित है अनादिकाल से, हर द्रव्य का उसकी पर्याय का, तो मुझे ये उपदेश इतना निरर्थक लगता है क्या सारे शास्त्र भरे पड़े हैं उसमें जो हमसे होना है वो बिल्कुल पक्का नक्की है, फिर ये नहीं करना ये करना ये नहीं करना ये करना, इस समय से शाम तक ये उपदेश निरर्थक नहीं अनर्थक लगता है, क्या अंतर समझ में आया, निरर्थक और अनर्थक में क्या फर्क है, निरर्थक का मतलब है किसी काम का नहीं, कोई प्रयोजन इससे सिद्ध नहीं होता, और अनर्थक का मतलब है अनर्थ पैदा करता है, समझे, निरर्थक नहीं अनर्थक है, क्यों कि जिस कर्तृत्व बुद्धि को हम तोड़ना चाहते हैं इससे उसको इसमें पोषण मिलता है, क्या है जरा समझना, तीन पॉइंट कहता हूं ध्यान से सुनना, जब कोई आदमी का अच्छा बुरा होता है तो कुछ लोग कहते भी तेरे पाप कर्म का उदय है, तूने पहले ऐसा किया होगा उसका फल तुझे भोगना पड़ रहा है, तो उसको उस पाप कर्म का करता, तू ऐसा नहीं करता तो ऐसा नहीं होता, भविष्य में सोच ले ऐसा नहीं करना, ये आप समझे ना। अब ये फिर दूसरा कोई कहता है कि भाई कोई कर्म परम से कुछ नहीं होता, ये बिल्कुल ऐसा सुनिश्चित ही है, तो बात तो सही ये है ना कि हम कर्म के उदय से समझाएं उसे इससे समझाना चाहिए, इसलिए हमारे यहां एक नया शब्द आया उसका नाम भाग्य, भाग्य किसे कहते हैं रमेश जानते हैं, क्यों? कि पूर्व कर्म का उदय, उसको भाग्य कहते हैं। ये भाग्य शब्द की सबसे गलत व्याख्या है आदमी की। फिर कर्म ही कहो ना, भाग्य क्यों कहते हो? इसमें आत्मीमांसा में और अर्थशास्त्री में ये लिखा है कि इसमें दो चीजें मिक्सर हैं, एक होनहार और एक कर्म का उदय। मतलब पांच संभावों में दो संभाव इस भाग्य शब्द में है। तो हमने उस भाग्य शब्द को में जो कर्म के उदय को ही समझ लिया और वो होनहार वाले पॉइंट को बिल्कुल उड़ा दिया। इससे क्या नुकसान हो गया कि ये सारा उपदेश हमें सार्थक लगने लग गया और सब बस इसने ऐसा किया तो ऐसा हुआ, ऐसा लग गया और वो लिख दिया हमने कोई एक नाटक, मैना सुंदरी नाटक, और बढ़िया बढ़िया गीत लिख दिए कि मैना सुंदरी ने एक किया और फलाने ने एक किया, फलाने ने एक किया और इससे हो गया और ये हो गया। ख्याल में ही ना, मेरा एक विचार नया मैना सुंदरी नाटक लिखने का भी है, जो शायद अगले भव में होगा तो होगा, कि तुम लोग करोगे तो कर लेना। क्योंकि मैं कुंद कुंद के ग्रंथों का निरंतर अध्ययन करने से और अनुशीलन वगैरह करने से उपयोग की पवित्रता मैं रखना चाहता हूं, तो उसकी वजह से मैं उसी में लगा रहता हूं, इनके लिए फुर्सत नहीं मिलती है। लेकिन तुमको मैं उसका रास्ता बता देता हूं, कोई भविष्य में लेखक लिखना चाहे तो लिख सकता है। मैं क्या लिखना चाहता हूं, क्यों लिखना चाहता हूं? इसलिए लिखना चाहता हूं कि मैं उसको, जैसे वो मैना सुंदरी ये नहीं कहेगा कि मैंने जैसे कर्म किए होंगे वैसे फल मैं भोगूंगी, वो ये कहेगी कि मेरे भविष्य में जो पहले से नक्की है वो होगा, तुम कौन होते हो करने वाले, समझ गए ना? यद्यपि ये बात मेरे समझ में उस वक्त भी थी कम, जब मैं 19-20 वर्ष का था, इसलिए मैंने सीता के मुख में दो शब्द डाले। एक तो ये डाला, किया होगा कोई भयंकर अपराध मैंने गत वर्ष में, बोलो पंक्तियां क्या हैं? आपका इसमें कोई दोष नहीं है, मैंने गत वर्ष में गत भवों में कोई बड़ा अपराध किया होगा, उसी के फल में यह संयोग मिला है, उसमें न आपका दोष। तो ये तो कर्म की बात आ गई। और फिर लिखा वो एक पंक्ति है ना, सभी से सुनिश्चित संयोग, सभी है निश्चित सद संयोग, एक पंक्ति ऐसी भी इसके बारे में है यार, नहीं है कि तुम क्यों विकल्प करते हो? ये तो अनंत काल पहले से सुनिश्चित था। आदिनाथ भगवान से पूछते तो वे भी बता देते क्या है, है? तो वो होनहार माने कर्मबद्ध पर्याय वाला पॉइंट डाला और कर्म के उदय वाला डाला, और उन दोनों को मिला के भाग्य बना, समझ गए ना? अब मेरा यह है कि उधर का वजन इतना ज्यादा है तो इधर पे वजन ज्यादा डाला जाए होनहार पे, तब वो बैलेंस बने क्या? वो बात यही कहेगा तुम कौन होते हो, मैंने जैसा किया था वैसा, ऐसा नहीं बोले। ये तो भगवान महावीर से पूछते, उनसे पूछते आदना तो उन्हें नहीं पता था कि ऐसा ही होना नक्की था। प्रत्येक देव का प्रति समय में क्या होगा वो नक्की है, जो होना होगा वो ही होगा। तुम्हें जो विकल्प है पिताजी अपना तुम पूरा करो, तुम अपने विकल्प के चक्कर में पड़े चढ़े रहो, मुझे कोई विकल्प नहीं है। क्यों? बस इतना एंगल चेंज करना है बस, और कुछ नहीं। और सब वैसे की वैसे, श्रीपाल का श्रीपाल, मैना सुंदरी की मैना सुंदरी, और सब बातें वैसी की वैसी रहेंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा इसमें कोई परिवर्तन हुआ है। तो हम ये बताएंगे कि पुराने नाटक में और हमारे नाटक में क्या अंतर है, तब तुम्हारी समझ में आएगा। क्यों अजीत जी, समझ में आया ना? फिर हमने बताया था ना एक दिन कि हमारी पूजनों में और अन्य पूजनों में क्या फर्क है, तो ख्याल में आई ना बात। नहीं तो हम एला केला और अपने बादाम और नारियलों के गीत गाते रहे सारी जिंदगी पूजा कर करके, मेरे कितना बढ़िया केला है, छतरीदार है, ऐसा है। जल से लेके फल तक के गीत गाते रहे, इनकी स्तुति करते रहे, भगवान का बारे में कुछ सोचा ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं, कुछ कहा नहीं। तो अपन तो सही बोलते हैं ना, जल पूजा और फल पूजा बोलते ना, तो वही सही बात की है। पर कभी कभी हम कह देते कितना बढ़िया अध्यात्म भरा है, मुनि मन समय उज्ज्वल नीर। तो मुनि के मन के समान पवित्र है, कितनी बढ़िया उपमा दी। बात तो ठीक है, उससे तो बहुत ही बढ़िया है, सरस फल है, बहुत ही अच्छी है, लेकिन आखिर नीरई की प्रशंसा है ना, भगवान की तो नहीं है, है? मेरा अंतर समझ में आया ना, माने वो जो एक टोन थी वो तो उनके ख्याल में आई कि हम इसकी ये बातें प्रशंसा करें, इसकी बजाय हम ये आंतरिक उपमाएं दें, लेकिन इन भगवान की स्तुति करें जिनकी पूजन हो रही है, कुछ बात उनकी आए, इसमें एक क्या तकलीफ है मालूम। कहते आदिनाथ की पूजन हो जाए, आदित्यनाथ की संभव, वो अष्टक उठा के आप कहीं रख दो, क्यों फर्क ही नहीं पड़ेगा। जब आपने पार्श्वनाथ भगवान की पूजन की तो तुम कहां पैदा भए थे, बनारसी में पैदा भए थे, वहां ऐसा हुआ था, वहां ऐसा हुआ था, एक नाग नागिन के साथ ऐसा हुआ था, फिर धर्मेंद्र पद्मावती आए थे, ये कहानी सुनाने की बजाय कि तुम आत्मा से परमात्मा कैसे बने ये कहानी भी तो सुना सकते थे। क्यों तुमने पहले अणुव्रत लिए, फिर महाव्रत लिए, फिर मुनिपद धारा, फिर सबके श्रेणी चढ़े, ऐसे ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते मोक्ष चले, ये क्यों नहीं सुना सकते थे। तुम भगवान कैसे बने, क्यों ये बात भी तो सुना सकते थे ना। तो अभी बात चलती है, देखो इसका हिंदी का कलश पढ़े अपन, अच्छा लगेगा। सब पुद्गलों में है स्वाभाविक, वस्तु के परिणमन का ये सहज नियम है, मतलब स्वभाव से ही है, इसमें किसी ने किया नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं कि बरसात आई और आपने खेत जोता और खेत में बीज डाल दिया, यहां तक थोड़ा बहुत करते तो आप अपना अपना मान लो, वैसे तो हजारों लाखों पेड़ पौधे ऐसे हैं कि उनका बीज कोई बोता ही नहीं है। जिस खेत में आपने गेहूं बोया है उसमें अकेला गेहूं नहीं होगा, घास भी उगी है, और घास का बीज किसने डाला था बोलो है? तो तुम्हारे बीज डालने से कुछ हुआ है, इसमें कुछ दम नहीं है, है? और फिर फल आएंगे तब तुम उसे काट लोगे, क्यों? इसके अलावा तुम्हारा क्या कर्तव्य है मुझे ये बताओ। मैंने बरसात की बात क्यों की, क्योंकि अभी तुम्हें पानी देना भी तुम्हारे हाथ में नहीं रहा, तुम्हें नहीं करना है। यदि मैं सर्दियों वाली फसल की बात करता, गेहूं बोवाता, तो कहते कम से कम पानी तो देना पड़ता, समझ गए क्या कहना। यानी बरसात हो गई, जमीन गीली है, आपने बीज डाल दिया, बस आराम, और फल आएगा तब पक जाए पूरा, तब काट लेना और ले लेना, क्या किया तुमने। तो वो कहता है कि अरे मैंने कोई गाय भैंस उसको खाना डाला पेड़ पौधे को, इसलिए उसकी रक्षा की, रात रात भर में खेत पे ही सोया, घर में नहीं सोया, इसलिए मैंने बहुत काम किया है। ये मैं क्यों सुना रहा हूं कि वो कह रहे कि प्रत्येक पुद्गलों में प्रणमन करने का स्वाभाविक गुण है, तुम क्या करोगे उसमें, कि हम उसमें कोई विघ्न नहीं आने देंगे क्या? तो और उसके प्रणमन में है ना कोई विघ्न, जब कोई विघ्न है ही नहीं, जब कोई सहयोग नहीं कर सकता है तो कोई विघ्न भी नहीं कर सकता है। अब तो तुम्हारा काम बिल्कुल ही नहीं रहा ना, सब पुद्गलों में है स्वाभाविक प्रणमन की शक्ति, जब और उसके प्रणमन में है न कोई विघ्न जब, तो क्यों न हो तब स्वयं करता स्वयं के प्रणमन का, फिर तुमको बीच में क्यों लाए, तो फुल पावर उसमें है, कोई बाधा भी नहीं है, है ना। एक बच्चा पैदा होता है तो अपनी उसमें उस शक्ति से और बढ़ता जाता है क्यों, और बढ़ता जाता है, अब अपन कहते हमने पाला पोसा तो कितना 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 वो होता है। कल तो टीवी पे एक बहुत बच्चे तो समाचार आ रहा था बहुत लंबे समय तक, आप लोगों ने शायद देखा होगा कि एक बच्चा मर गया था अमेरिका में, डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था, लेकिन उसकी माँ ने नहीं माना और जबरदस्ती वो डॉक्टर से अपने बच्चे को छीन के ले गई और अपनी छाती से बिल्कुल कपड़े खोल के ऐसे अंदर छाती से उसने चिपका लिया और चिपकाती रही और उसे हमें बोलती रही कहते तुम आए तुम तेरे आए कहता तुम्हारी बहन है, तुम बहन के साथ खेलेगा, वो तेरा इंतजार कर रही है, ये करे ऐसी बातें जो कभी वो सुन ही नहीं सकता, वो सब बातें इसमें बता रहे थे, ऐसी बोलती रही और दो घंटे डॉक्टरों ने बहुत कहा कि मर गया है इसको देखो, उसके पति ने भी मान लिया, उसने भी बहुत कहा लेकिन वो मानी नहीं, और दो घंटे बाद वो बच्चा एकदम रोने लग गया और एकदम फिर माँ का दूध पीने के तैयार हो गया और जिंदा हो गया। तो वो कह रहे थे अमेरिका के डॉक्टर सब कि इसका मतलब है कि माँ के स्नेह में इतनी ताकत है कि वो मरे बच्चे को भी जिंदा कर सकती है। अपने को बहुत बड़ा वैज्ञानिक मानते हैं, विज्ञान ने भी ये बात मान ली है, विज्ञान ने भी अब असलियत में वो डेथ कैसी हुई होगी, जो मेडिकली डेथ जो मेडिकल में मान लेते हैं ना ऐसी डेथ हुई, वास्तव में मरा नहीं होगा। और ये बात सही है कि उसे ऐसे ही छोड़ देते दो घंटे में गाड़ देते तो मर नहीं था, वैसे ही छोड़ देते तो, लेकिन उसको माँ छाती से चिपकाई रही तो उसमें का नेचुरल गर्मी उसे मिलती रही जो उसके माँ के पेट में मिलती थी, तो उसका टेम्परेचर बहुत डाउन हो गया था, जितना डाउन होने से वो मरा मान लेते हैं डॉक्टर, और उसने टेम्परेचर को मेंटेन कर लिया, वो खुद ही कह रहे थे तो टेम्परेचर को मेंटेन कर लिया, जिंदा हो गई। एक विश्व का ये आश्चर्य हो गया, सब बराबर माँ में कितनी ताकत है, माँ में कितनी ताकत है। अब क्या, अब उसे क्या होगा कि कोई भी माताएं बस छोड़ेंगी नहीं, वो 4 घंटे तक पागल बनी रहेंगी और मुर्दों को जलाने नहीं देंगे, और लोग भी कहेंगे कोई भक्तामृत का पाठ करेंगे, कोई नमोकारमृत का पाठ करेंगे, कोई अपने छाती से चिपकाएंगे, कोई ये करेंगे, ये सब हो जाएगा, आप करके जला सकते हैं। और आध्यात्मिक शक्ति बहुत होती है, इसको आध्यात्मिक बोलते हैं। आप लोगों को किसी को पता होगा, यहां जो मोरारजी देसाई आए थे प्रधानमंत्री थे वो जब, और एक आध्यात्मिक सम्मेलन सीतांबरों ने किया था, तो उस आध्यात्मिक सम्मेलन में मैं भी वक्ता था और मोरारजी देसाई भी थे और भी लोग होंगे जो हैं, तो उसमें भाषण वाषण तो हो गए सब, फिर हम सब लोग वो हमको ले गए कहाँ, ये जो अपन खानिया जाते हैं ना, तो वहीं नीचे कोई बंगला है ना बड़ा किसी सेठ का, क्या नाम है, हाँ गोलेश्वर गार्डन, वो गुलेसा गार्डन में गए तो वहां पर चाय पानी था, तो सब लोग हम बैठे मुरारजी देसाई के साथ वहीं बैठे, वहां बात हुए, वहां बात होने अध्यात्म पर बात होने लगी। मैंने उनसे कहा कि ये आप जो कह रहे ये अध्यात्म है, ये तो सब क्रियाकांड है, अध्यात्म की विरोधी चीजें। अध्यात्म शब्द का अर्थ ये होता है, मैंने बताया उन्हें कि अधि माने होता है जानना और आत्म माने होता है आत्मा, तो आत्मा को जानने का नाम अध्यात्म है। अब जिसे आप अध्यात्म अध्यात्म कह रहे हो उसमें आत्मा तो की बात ही नहीं आई। आध्यात्मिक शक्तियां ऐसा मान करके समझने लग गए, उसका सांप का जहर उतर गया, वो हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब आध्यात्मिक शक्तियां हैं। हमने भौतिक शक्तियों को माना है, क्यों हमने एकदम ऐसा किया तो आकाश से पानी बरस गया। ये जो महागीत में छात्र है उस सबको आध्यात्मिक शक्तियां, जैन विद्वान भी कह रहे थे, वे भी कह रहे थे कि वही आध्यात्मिक शक्ति है। वो कोई माने उपवास उपवास किए थे, तो इतने उपवास करने के बाद भी वो जिंदा है और बिल्कुल स्वस्थ है, वो आध्यात्मिक शक्ति के कारण वो जिंदा है। तो इसमें अध्यात्म अध्यात्म कहाँ है? तो ऐसा देखने लग गया कि मैं कौन सी चिड़िया घर से आए। मैं कहा अध्यात्म तो इस चीज का नाम है। फिर वो प्रधानमंत्री मिट गए। अब उसके बाद बंबई में एक वो हॉल है, बहुत बड़ा हॉल है, 6,000 आदमी बन सकते हैं जिसमें। अरे वो उसका नाम मैं भूल रहा हूं अभी, तो उसमें बड़े बड़े नेताओं सब कार्यक्रम, उनमें हमारा उनका फिर कार्यक्रम एक साथ हुआ जब वे प्रधानमंत्री मिल चुके थे। तो मैं मेरे को देख करके ऐसे देखे, बहुत देखे, क्यों? क्योंकि दिमाग में तो वो बात निकली नहीं थी। और फिर मेरा अहिंसा पर व्याख्यान हुआ, उनने सुना पूरा, और उसके बाद में जो उनने बोला वो इसके विरुद्ध ही विरुद्ध बोला। कभी ऐसा है अध्यात्म नहीं है, ये अध्यात्म है, ये भी है, ये भी है, ये भी क्या क्या अध्यात्म है उनने वो सब बताया। पहले का उनको ध्यान होगा ना, पहले का, और फिर मेरा अहिंसा का भाषण, उससे और नमक उस पर चढ़ गया संग पे। तो वो ही वो सब बोलते रहे, लोगों की तो कुछ समझ में नहीं आया क्या हो रहा है, क्या बोले साहब जी, क्या बोले साहब। मैंने कहा वो तो अपना मूत्र पी करके वो जो बीमारियां ठीक करना उसका नाम अध्यात्म मानते हैं क्या? क्योंकि उन्होंने कोई दवाई नहीं ली भौतिक, अपना मूत्र तो अध्यात्म है। क्या होता है अध्यात्म, किसी को कुछ खबर ही नहीं है। कितने दूर अध्यात्म के नाम पर क्या क्या चलता है, ये जितने भी ढोंग धपुए चल रहे हैं ना धर्म के नाम पर, आजकल उसका नाम उन्हें अध्यात्म का नाम दे दिया। और वे सब रामदेव बाबा भी आध्यात्मिक संत हैं, जिनके मुंह से आत्मा शब्द ही नहीं निकलता कभी, ख्याल में ही ना, वे आध्यात्मिक संत हैं। अरे भाई अध्यात्म शब्द का सीधा अर्थ है, उस पर ही विचार कर लो ना। अधि माने होता है जानना, अधिगम माने जानना तो होता है, जानते ना। और आत्म माने आत्मा को जानना, इसका नाम अध्यात्म है। तो जो आत्मा के जानने संबंधी चर्चा है वो सब आध्यात्मिक चर्चा है, और उसके अलावा कोई भी चर्चा आध्यात्मिक चर्चा नहीं है। क्यों? ब्लड प्रेशर एक दवाई से भी कम होता है और आध्यात्मिक शक्तियों के आधार से भी कम होता है। और ये आध्यात्मिक शक्तियां कौन सी हैं? एकदम आंख बंद करके बैठ जाओ, एक नाक ऐसी बंद कर लो, इधर से एक नाक एक से हवा निकालो, इससे ये आध्यात्म से आत्मा कहां आ गया? क्यों इसे अभी नाक को ऐसा करो इसे छोड़ो, ऐसे करो पेट को ऐसा करो, इसमें आध्यात्म कहां से आ गया? लेकिन सारी दुनिया भी उन्हें आध्यात्मिक मानती है, आत्मा का कहीं नाम ही नहीं है। आत्मा के नाम से चिड़ है, आत्मा के नाम से बुखार आ जाए, वे हमारे सारे संत आध्यात्मिक संत बने हुए हैं, ख्याल में नहीं ना। और अध्यात्म के बल पर ही सारे चमत्कार इसको कर करके दिखा रहे हैं कि इससे हो गया, इससे हो गया। देखो तो कहते हैं सब पुद्गलों में है स्वाभाविक प्रणमन की शक्ति, जब और उनके प्रणमन में है न कोई विघ्न, जब ये उतना ही बड़ा सत्य है। कौन सा सत्य है कि जैसे प्रत्येक पुद्गल अपना प्रणमन का करता है तो और कोई दूसरे की ताकत नहीं है कि उसमें विघ्न उपस्थित करे। अब विघ्न ही नहीं है तो सुरक्षा की कहां जरूरत है। हमारे मुनिराज जंगल में नग्न दिगंबर शेरों और चीतों के बीच में बैठे हैं, क्यों? तो इसके बल पर बैठे हैं कि काय के बल पर बैठे? उनकी निर्भयता का आधार क्या है कि मैं तो मुनि हूं, मेरा नाम लेने से जब शेर दूर भाग जाता है तो मेरे पास तो आई कैसा सकता है, क्योंकि मैं आध्यात्मिक संत हूं। अरे इसके भरोसे नहीं बैठे हैं, कह रहे देह में हुई नहीं तो खाना है तो खा जाए, जिसको जो करना है करे, मुझको कोई लेना देना इससे नहीं है। और उन्हें पक्का भरोसा है कि जो होना है वो ही होगा, इसमें रंत मात्र भी गुंजाइश नहीं है। इसके बल पर वो इतने निर्भयता है उनके आधार में। देखो अपने भजन आता है बहुत बढ़िया, 3 मिनट है, 3 मिनट में बताता हूं। हमें कछु भय ना रे, मैंने जान लियो संसार, मुझे कोई डर नहीं है। लेकिन वो जो मरम की बात क्या है, सेनापति भी कहते हमें कोई डर नहीं है, लेकिन वो कहते मेरी निडरता का आधार क्या है कि मैंने संसार का स्वरूप जान लिया है। क्या क्या जान लिया तूने? जा को जा करी जा ही समय में, जो हो तब जा द्वार, सो हुई है तरी है कछु नाही, कर लीनो निर्धार, आते कछु भय नारे। उनकी निर्भयता का आधार तो है, नहीं होगा वाला कहा है। जिस द्रव्य का जाकर ही माने जिसके द्वारा, जा ही समय में, जिस समय में, और हो तब माने भवितव्य होनहार, जो होना नक्की है वही होगा। तरी है कछु नाही, उसमें लंच मात्र भी परिवर्तन नहीं हो सकता। ये मैंने निर्धार माने निर्णय कर लिया है। तो उनकी निर्भयता का आधार ये था, शेर नहीं खाएगा ये नहीं, यदि खाना होगा तो खाएगा और नहीं खाना होगा तो नहीं खाएगा, उसमें कुछ भी परिवर्तन संभव नहीं है। अब उसको कोई गड़बड़ नहीं है, शेर ने आगे खा लिया तो भी बात वही है कि यही कह रहा था ना, खाना होगा तो खाएगा, नहीं खाना हो तो नहीं खाएगा। वो तो इसको कहते हैं गारंटी काय को, कि नहीं अब खा ही नहीं सकता, नहीं ना वो कारण तो बोलूंगा वो खा ही नहीं सकता। अब नमो कार मंत्र में जिसको नमस्कार किया है वो उनको ही खा गया, तू कौन सी खेत की मूली है, उनके नाम लेने से तेरे तू कैसे बच जाएगा। तो फिर नमो कार मंत्र किसी काम का नहीं है, तुम नमो कार मंत्र की महिमा कम कर रहे हैं। घबराना नहीं, मैंने सारे देश में पिछले वर्ष ये नमो कार मंत्र की ऐसी ही महिमा सुनाई है और लोग दांतों के उंगलियां तेज दबा रहे, कोई ने एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि उसके पीछे तर्क युक्तियां आगम का इतना जबरदस्त आधार था। क्या कि कोई बोल ही नहीं सकता, नापसंद तो बहुतों को हुआ होगा, लेकिन बाद में तो ये पोजीशन हो गई थी शांति जी कि हर गांव से ये आते थे हमारे यहां तो नमोकार मंत्र का ही होना, दूसरा व्याख्यान हमें चाहिए ही नहीं। अब परिसर में जा रहा हूं ना बड़ौदा, तो एक नमोकार मंत्र का तो करना ही पड़ेगा, वो पब्लिक मीटिंग में, वो पब्लिक को बुलाएंगे, पूरी मीटिंग करेंगे खुले मैदान में, सभा में पंडाल बना के, और उसमें एक नवोकार मंत्र का तो होना ही होगा, और बाकी तुम जो चुनो चुन लेना, 3 होंगे, संडे आएंगे ना, 3 संडे फंडे, बाकी जो जिन्हें 10 दिन चलेंगे। इसका मतलब है जनता तो समझना चाहती है, लोग समझते हैं विरोध होगा, ऐसा मत कहो विरोध होगा, कहां हुआ विरोध? एक आदमी ने अकेले में भी आकर के एक शब्द नहीं बोला, हजारों आदमियों ने आकर के महिमा गाई, क्या आपने बहुत बताया, गजब किया गजब किया। हम मुफ्त नहीं डर रहे हैं, लेना नहीं देना नहीं है, लेकिन एक बात समझ लेना बेटा कि तर्क युक्ति आगम अपने को पूरा मजबूती से चाहिए। ऐसी चाय जैसी ठोक दी, कोई आपके पास उसका नहीं है तो पिटाई होगी, फिर मुझे दोष मत देना, नहीं तो हाथ मत डालना, ख्याल में आई ना? लेकिन एक सब पूरे आगम के आधार पर, अब मैं ये कह रहा हूं एक शब्द कि अध्यात्म का ये अर्थ है, अब उसमें आत्मा तो आ ही नहीं रहा तुम्हारा, तो इसको बात तो सही कह रहे, बात तो सही कह रहे कि कहां है आध्यात्मिक शक्ति, आत्मा की शक्ति कहां है? तुम तो मंत्र की शक्ति बता रहे, मंत्र माने आत्मा थोड़ी है, क्यों? उसके उच्चारण की शक्ति बता रहे हो, तो उच्चारण तो पुद्गल का शब्द, भाषा वर्णन तो पुद्गल की है, इसमें आत्मा का क्या है? समझ में आती है बात? इसलिए कहते हैं देखो, क्यों ना हो तब स्वयं करता स्वयं के परण मन का, फिर क्यों नहीं दूसरा क्यों करेगा? यह सहज ही नियम जानो वस्तु के परण मन का। नाटक समय सार में देखो अपन ने बताया था दोनों में फर्क क्या है, अपन ने इसका कलश पद अनुवाद किया, ये आपने ऊपर पढ़ा है, ये नाटक समय सार का है। पुद्गल परिणामी दरवे सदा परन में सोए, आते पुद्गल कर्म को करता पुद्गल होई। अब संस्कृत भी तुम जानते हो, संस्कृत का छंद है वो ऊपर वाला छंद है, ये नीचे वाला छंद है, बात तो तीनों में एक ही आएगी, आई है ना? फिर भी जो हम बात कहना चाहते हैं सीधे हृदय पर चोट करने वाली बात कहां से आती है वो हमें, यहां तो इसमें पुद्गल का कर्ता पुद्गल है, पुद्गल का कर्ता पुद्गल है, इतनी सी बात आ गई। सत्य तो यही है ना कि तुम्हारा इस शरीर में कुछ नहीं चलेगा, क्या ये शरीर में तुम्हारा जो प्रणमन है ना, इसमें तुम जरा ध्यान रखोगे तो बहुत बढ़िया स्वस्थ रहेगा, और ध्यान नहीं रखोगे तो स्वस्थ नहीं रहेगा, इसमें कुछ दम नहीं है। ये हमारे मुनिराज है ना, वे क्या ध्यान रखते हैं खाने का, उनका खाना पराधीन है, लेकिन लोग तो माल मसाला खिलाने से कोई स्वस्थ रहता है? तो डॉक्टर लोग बंद क्यों करते सबका माल मसाला, हमें रूखी रोटी क्यों खानी पड़ती, क्यों? उनके हाथ में कुछ नहीं है, एक टाइम खाना। अब ये कहते हैं कि पानी खूब पियो, कम से कम 8 गिलास पानी दिन में पियो, तब अब बेचारे नहीं कुछ भी नहीं है ना। और अब देखिए कि ये अच्छे अच्छे सब पूरा ध्यान रखने वाले 50 वर्ष की उम्र तक आते आते सब जवाब देने लगते हैं, पुर्जे पुर्जे तय तय फिस करने पड़ती है, हो जाती है कि नहीं हो जाती है, और वो वहां सब शतक मार रहे। विदेश वाद की बहुत खुशी है, मैं अच्छे अर्थ में कह रहा हूं, बुरे अर्थ में नहीं कह रहा हूं, है ना? वो बुजुर्ग हैं हमारे, निर्माण सागर जी हैं कई, है ना, 100-100 वर्ष के होने को आ रहे हैं, अभी भी पैदल चलते हैं, चलते हरा खाते हैं, सब चल जाएगा कहां मरी कहीं कहां बोलिए क्या समझ? तुम्हारी ये बाहर की सावधानी से तुम्हारे जीवन का क्या संबंध है? इतनी दवाइयों से, इतने खान पान के परहेज से, वहां तो कितनी पराधीनता है, हैं? और जिसे आप बोलते हो लोग भक्ति से बहुत देते होंगे तो वो तो और ज्यादा बदपरहेजी कराते हैं, लेकिन है उनका स्वास्थ्य है। अब फिर मैं क्या कह रहा हूं, तुम उल्टा मत समझना कि वे मुनि है इसलिए है, ये भी नहीं कह रहा, उनका ऐसा ही है ना है इसलिए है, पर हमारा नहीं होना है इसलिए नहीं है, क्यों? फिर वो अर्थ हो जाएगा, यहाँ तुम दवाइयों पे मर रहे, फिर वहां पर ऐसा करने पे हो जाओगे, अब मैं एक टाइम खाऊंगा और ऐसा करूंगा ऐसा रहूंगा तो मैं 100 वर्ष तक नहीं आऊंगा, इस धोखे में मर जाओगे। अरे जितना आयु क्रम तुम्हारा होगा निमित्त की अपेक्षा, और क्रमबद्ध में जितना काल तुम्हारा नक्की होगा, उसमें से एक पल कोई घटा नहीं सकता और एक पल कोई बढ़ा नहीं सकता, ये नक्की करो, उस आधार पर निर्भयता आना चाहिए तो उसका नाम सच्ची निर्भयता है, वास्तव में वो बाकी निर्भयता है।
Yeah.